अच्छा हाँ, इस श्लोक के बाद है वो। तो हम लोग आपके सेवा से ही कृतकृत्य होंगे, तो वही अपनी कृतकृत्यता बता रहे हैं कि जब हम आपको देखते हैं तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा आनंद है। अहो सनाथा भवता स्म जद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् पश्येम रूपम् स्निग्ध निरीक्षणाननम् पश्येम रूपम् तव सर्वसौभगम्। हम सनाथ कब होते हैं? हम तब भाग्यशाली होते हैं जब हम आपके रूप को देखते हैं। अहो सनाथा भवता स्म जद्वयम्। हम इतने दिन तक अनाथ थे, मृतक की तरह थे, लेकिन आपका हंसता हुआ मुख देख करके आज हम जी गए, हम सनाथ हो गए। अहो सनाथा भवता स्म जद्वयम् त्रैविष्ट पानमपि दूरदर्शनम्। आपका यह सुंदर रूप, आपका दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ। त्रैविष्टक देवताओं को कहते हैं, जो तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। देवता भी तरसते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। तो जो देवताओं का को दुर्लभ है, वह रूप जब हम लोग देखते हैं तब हम लोग सनात होते हैं। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि आप कभी भी हमारे आंखों से ओझल मत होइए, आप सदा हमारे साथ रहिए। कैसा मुख है, प्रेमस्मित स्निग्ध निरीक्षण आननम। आननम आनन का अर्थ है मुख। आपका मुख कैसा है? प्रेमस्मित स्निग्ध निरीक्षण, जिसमें प्रेम और स्नेह से निरीक्षण है। भगवान का मुख तो वैसे ही परम सुंदर है, लेकिन जब प्रेम से मुस्कुरा करके किसी को देखते हैं अपना जान करके, तो उस दृष्टि का आस्वादन द्वारकावासी किए हैं, तो उसको देखे बिना हम नहीं जी सकते। प्रतिदिन भगवान को देखने की लालसा होती है, दिन में 500 बार सैकड़ों बार देखने की लालसा होती है। ऐसा नहीं कि सवेरे एक बार दर्शन कर लिए बस दिन भर हो गया है। उस क्षण क्षण में देखने की लालसा होती है। राधा रानी एक बंगला पद में कहती हैं कि हम तो जन्म भर कृष्ण के रूप को देखती रही, लेकिन जब देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि पहली बार देख रही हूँ, प्रथम बार देख रही हूँ। इतनी लालसा होती है। प्रेमस्मित स्निग्ध निरीक्षण आनंद, प्रेम से मुस्कान और स्नेह से निरीक्षण उस मुख में है। मुस्कान और निरीक्षण दो से युक्त है आनंद भगवान का। भगवान श्री कृष्ण सदा प्रेम से मुस्कुराते रहते हैं और स्नेह से देखते। भगवान का चेहरा हमेशा एक समान रहता है हंसते हुए। ऐसा नहीं होता है किसी दिन रुक्मिणी जी से झगड़ा हो गया है, वो गंभीर हो गए हैं और ऑफिस में बैठ कर चिंता नहीं है, वाइफ से लड़ाई हो गई है, या ये बिल चुकाना है वो देना है, चिंता चढ़ गई है, क्या करें। भगवान ऐसे नहीं है, सदा हंसते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। उनको ना तो किसी चीज की कमी है, ना उनका कोई अपमान कर सकता है, ना कुछ भी, सब तरह से सुख से परिपूर्ण है। जब उनके मुख का वर्णन मिलता है तो वैसा ऐसा है प्रेमस्मित स्निग्ध निरीक्षण आनंद। ब्रज में गौएं चराते हैं तो नाचते हुए खुशी से गाते हुए बस यही कार्य। किसी दिन ऐसा नहीं हुआ कि शाम को लौटे हों और ये सोच रहे हों कि तो बहुत परेशान हो गया गाय चरा कर। वैसे प्रथम दिन जब गाय चराने गए थे तो माँ के स्नेह की वृद्धि के लिए वे कहते हैं, माँ मैं नहीं गाय चराने जाऊंगा, ये ग्वाल बाल सब आराम करते हैं और हमसे ही गाय घिरवाते हैं। परेशान कर डाले हमको, मैं कल नहीं जाऊंगा, इसलिए कहते थे कि माँ सोएगी सुख से। नहीं तो अगर ये जानते कृष्ण कल भी जाएगा तो चिंता में डूब जाती थी, कल भी जाएगा। तो शाम को कृष्ण कहते थे कि अब गाय चराए नहीं जाऊंगा, तुम्हारे गोद में रहूंगा, आराम से रहूंगा, तो माँ कहती थी ठीक। और सवेरा होने पर फिर वही हट, मैं गाय चराने जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बंसी बट में खेलूंगा, गाय मुझसे लोग घिरवाते नहीं है, मैं तो आराम से केवल खेलता हूँ, मुझे छुट्टी दो जाने दो जाने दो, तो मैं छोड़ देती थी। बलराम जी को कहते थे कि देखते रहना, कहीं जमुना में स्नान न करे, कहीं खोह कंदरा आदि में झांकने न पावे, भालू बानर सिंह रहते हैं, सब बचा करके रखना, और इसे कभी गाय मत घिरवाना। तो केवल जा रहा है शौक से, इसको ले जाना और जल्दी आ जाना, रोज जिस समय पर गौ आती है उसे बहुत पहले आ जाना। और बांध करके देती थी भोजन, दही भात कई प्रकार के पकवान, और कहती थी घंटे घंटे खिलाते रहना। और श्री कृष्ण आते थे शाम को, सोते थे, माँ की गोद ऊपर तो कहते थे पैर दर्द कर रहा है, बहुत गाय घिरवाए, कल बिल्कुल नहीं जाऊंगा, रोज कहते थे लेकिन फिर सवेरे चल रहे। और माँ के लिए रोज फल तोड़ करके लाते थे। वर्णन है कि अपने पीताम्बर के छोर में वृंदावन से फल तोड़ कर ले जाते थे अपने माँ के लिए। ये सीखने लायक बात है, जिन लोगों के माता पिता हैं उनको चाहिए कि कहीं जाएं तो माता पिता के लिए सोचा करें ज्यादा। माँ को ये देना है, पिताजी को ये देना है, केवल अपने रानी के लिए न सोचा करें। इसको ये देना हो दे। माता पिता के लिए ज्यादा सोचना चाहिए। भगवान रोज लाते थे फल, ये सूरदास जी ने गाया है अपने पद में, देते थे, माँ गदगद हो जाती थी कि मेरा बेटा मुझको इतना चाहता है, इतना स्नेह करता है। तो ये हमें बात बता रहा था कि इस प्रकार से भगवान का जो मुखमंडल है वो कहीं हो, यहाँ तक ये युद्ध में थे कुरुक्षेत्र में, और घोड़ों के खुर से रज उड़ती थी, पसीना छूटता था, लेकिन उस समय भी उनका मुख इतना सुंदर लगता था, इतना सुंदर। भीष्म पितामह तो उसी मुख को देख देख करके शरीर त्यागने की इच्छा कर रहे हैं, मरते समय उसी की याद कर रहे हैं, भगवान कितना सुंदर लगते, अपने मित्र को विजय दिलाने के लिए व्यस्त हैं, एक संसारिक व्यक्ति की तरह काम कर रहे हैं, घोड़ा हाँकना, दाएं बाएं घोड़ा हाँकना, पसीना मुख पर है, उसके द्वारा अलके हिलती हैं, तो अलकों के द्वारा ही जो पसीना पोंछा जाता है पोंछा जाता है। भगवान को फुर्सत नहीं है रथ हाँकने से कि कहीं चाबुक रख करके और हाथ से पूछ ले, इतना व्यस्त जीवन है कुरुक्षेत्र, अपने हाथ से पसीना पोंछने का अवसर ही नहीं। जो भगवान तो चाहते तो कर सकते थे, घोड़ों की लगाम छोड़ करके रुमाल से मुख पोंछ लें इसके बाद फिर हाथ से, नहीं, ये बहुत विकट स्थान है युद्ध, तो अलके जो चालित होते थे उसी से मुख का पसीना पोंछा जाता था, और अलकों पर तुरग रज, घोड़ों की रज पड़ती थी, ब्रज में गोरज पड़ता था, कुरुक्षेत्र में तुरग रज। लेकिन चाहे वो ब्रज में हो, चाहे कुरुक्षेत्र में हो, चाहे द्वारका में हो, भगवान बहुत सुंदर है और आनंद में है, उसमें कभी दुख में नहीं। प्रेमस्मिता स्निग्ध निरीक्षणानन पश्चिम रूपम तव सर्व सौहगम, हे प्रभु जब हम आपके इस रूप को देख रहे हैं तब हम सनात होते हैं, यही हमारा सुख है, इसीलिए आप हमको हमेशा ये रूप दिखाते रहिए, आप कभी मत जाइए कहीं। कथम वयम नाथ चिरोसिते त्वयि प्रपन्न कृष्णा पापोपशमनम, ऐसे जीवे न ते सुंदर हास शोभितम पश्यमाना बदनम मनोहरम। एक पाठ भेद है, अलग श्लोक, हम आप जब विदेश चले जाते हैं, आप प्रदेश में चले जाते हैं, जैसे हस्तिनापुर या द्वारका मथुरा आदि, तो हम कैसे जी सकते हैं, कथम जीवे ना, जो जीने की बात छोड़ दीजिए, आगे वाले श्लोक में कहते हैं जर्यम बुजाक्षा पशसार भो भवान कुरुन मधुन वाथ सुहृद दृक्षया तत्राब्द कोटि प्रतिमह क्षणो भवे रविम बिनाक्षरिवनास्तव चितम। हे अच्युत, जब आप अपने बंधुओं को देखने के लिए हस्तिनापुर या मथुरा चले जाते हैं, ब्रज में चले जाते हैं, तो उस समय हमारा एक एक क्षण कोटि वर्ष जैसा बीतता है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान मथुरा जाते थे। यहीं पर भागवत में ये बात प्रकट हो रही है, कुरुन मधुन। कुरुन का तो साफ अर्थ है हस्तिनापुर के लोगों से मिलने के लिए जाते थे, और मधुन का अर्थ है मधुवंशियों से, मधु प्रदेश मधुबन ब्रज में जाते थे। यह संकेत मिलता है क्योंकि द्वारकावासी कहते हैं कि जब सुहृद दृक्षया, जब अपने बंधुओं को देखने के लिए, युधिष्ठिर आदि को देखने के लिए हस्तिनापुर जाते हैं और नंद आदि को देखने के लिए मधुबन जाते हैं, उस समय तत्र उस समय अब्द कोटि प्रतिमा क्षण भवत, हमारा क्षण भी कोटि कोटि वर्ष के समान हो जाते हैं। आपको देखे दिन आपके विरह में एक क्षण कोटि वर्ष जैसा लगता है, इतना दुख होता है, अब लगता है समय बीत ही नहीं रहा है, दुख छा जाता है। तो द्वारकावासियों का बस यही सुख है, कृष्ण को देखना, कृष्ण की सेवा करना, और कोई दूसरी चेतना नहीं है, दूसरी आकांक्षा नहीं। इसलिए कहने का आशय है कि अब आप मत जाइए। प्राय आप अपससार, अपससार का अर्थ है कि आप भाग जाते हैं, आप द्वारका में बहुत कम रहते हैं, उधर से अर्जुन आता है बस लेकर भाग जाता है आप। वास्तव में ऐसे भगवान करते थे, बिना पहले नोटिस दिए बस कोई मित्र आया उसके साथ चल दिए, वृंदावन चले जाते थे अथवा कुरुक्षेत्र चल हस्तिनापुर जाते थे, इधर उधर चले जाते थे। जब आप चले जाते हैं तो आपको देखे बिना हमारा एक क्षण कोटि वर्ष जैसा दिखता है, हमारी वही दशा हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की दशा हो जाती है। रबीन बिना क्षण नष्ट हो चुके हैं अच्युत, आपके बिना हम लोगों की दशा क्या होती है, हमारी आंखें इतनी दुखी हो जाती हैं जैसे सूर्य के बिना आंखें, यदि सूर्य न रहे तो आंखें रहते हुए भी कुछ भी नहीं देख पाती हैं, यदि लाइट न रहे तो कुछ भी नहीं देख सकती। तो सूर्य के बिना आंखों की जो दशा होती है देखे बिना, वही दशा हमारी हो जाती है। आप ही हमारे जीवन है, आप ही लाइट हैं, प्रकाश हैं, सब कुछ आप ही हैं, इसीलिए आप हमारे नेत्रों से ओझल मत होइए, सदा हमारे साथ रहिए, यही हमारी प्रार्थना है। भगवान से और कुछ नहीं मांग रहे हैं कि हमको यह दीजिए वह दीजिए, बस आप हमारे साथ रहिए, द्वारका में रहिए, आपके बिना हम जी नहीं सकते। और वास्तव में भगवान के परिकर भगवान के बिना उसी तरह नहीं जी सकते हैं जैसे जलचर जीव को मछली को पानी से बाहर कर दिया जाए तो नहीं जी सकती। हम लोग तो ऐसे भी जी रहे हैं, जी क्या रहे हैं, खुश हैं। संसार में देख ही रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स में लगा हुआ खेल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसमें मस्त है, लेकिन भगवान के जो नित्य परिकर हैं भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकती। इति चोदिरिता वाच प्रजानां भक्तवत्सलः श्रीमानोनुग्रहं दृष्टा दितन्यन्त्र विशत्पुरी। इस प्रकार अपने प्रजा के इस तरह के स्नेहमय वचनों को सुन करके भगवान बड़ा आदर किए। श्रीमान सुन रहे थे ध्यान से, श्रीमान शब्द का यहाँ अर्थ है भगवान बड़े प्रेम से उनकी बातों को सुन रहे थे, ऐसा नहीं कि कोई कुछ कहे और ध्यान ही ना दिया जाए, सब पर भगवान देख रहे थे, उनके वचन को स्वीकार करे। कितना भगवान सुशील हैं और प्रेमी हैं, देखिए हस्तिनापुर की नारियों का अभिनंदन किए, उनकी बात सुने, फिर द्वारका के लोगों का एक एक पर दृष्टि डाल रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनवान है, एक एक की बात को सुन रहे हैं और इस प्रकार से सबको प्रसन्न करते हुए द्वारका में प्रवेश किए प्रायविशत पूरी में। तो भगवान द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं तो कौन कौन लोग उनका स्वागत करने आए हैं और किस तरह वे द्वारका में चल रहे हैं यह कथा तथा किस प्रकार वे अपने माता पिता से पहले मिले, अपनी माँ से मिले और इसके बाद अपने पत्नियों से अपने घर में वे सुख से रहने लगे, यही कथा है। भगवान जब अपने पत्नियों के साथ हो जाएंगे तो ये भक्तों को बहुत संतोष होता है सुन करके कि भगवान ये युद्ध से हैरानी परेशानी से मुक्त होकर द्वारका में आराम से रह रहे हैं। यहीं पर कथा का विश्राम किया जाएगा, ये कथा कल पूरी होगी। द्वारका में चलते हुए और अपने स्वजनों से खासकर पत्नियों से मिलते हुए भगवान हरे कृष्ण ऑल ग्लोरी टू द ऑल ग्लोरी टू द ऑल ग्लोरी टू श्री श्री गुरु गौरांग नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मधुभोज दशारहा कुकुरांधक वृष्णयः आत्मतुल्य बलैर्गुप्ता नागर भोगवती निव सर्वर्तु सर्व विभव पूर्ण वृक्ष लताश्रमहि उद्यानोपवनारामैर् व्रतपद्माकरश्रियं गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणां चित्रध्वजप्रताकाभि अन्तः प्रतिहता तपाम सम्मार्जित महामार्ग रथ्यापणक चत्वराम सिक्ताम गंधजलय रूपताम फल पुष्पाक्षतांकुरही द्वारि द्वारि गृहाणां च दभ्यक्षत्फलेक्षुभिः अलंकृतां पूर्णकुम्भैः बलभिर्धूपदीपकैः दशार्ह वंश कुकुरांधक वृष्णि भी कुकुर अंधक और वृष्णी के वंश में उत्पन्न हुए जादुओं द्वारा। आत्मतुल्य बल ही जिनमें अद्वितीय बल था, जिनके समान बलवान कोई नहीं है, ऐसे जादुओं द्वारा गुप्ताम वह द्वारका सुरक्षित थी। नाग ही नागों के द्वारा भोगवती भोगवती इवा जैसे। इस श्लोक के पूर्व श्री लसुत गोस्वामी जी कहते हैं कि पूरी जो सीताओं के हस्तिनापुर के नारियों के वचन का अभिनंदन किया भगवान ने मंद मुस्कान और निरीक्षण के द्वारा, और इसके बाद वे प्राविशतपुरी द्वारकापुरी में प्रवेश किए। तो अब द्वारकापुरी का वर्णन 5 श्लोकों में किया जा रहा है। मधुभोज दशारहारह कुकुरांधक वृष्णभि आत्मतुल्य बलैर्गुप्ताम नागर भोगवती निवा। उस द्वारका में जदवंशी रहते हैं। जदवंशियों में पूर्वजों के अनेक नाम हैं और उनके द्वारा शाखा प्रशाखा बहुत हो गया है, तो उनके नाम बता रहे हैं। मधु भोज दसार है, कुकुर अंधक वृष्ण इत्यादि, ये जादों के पूर्वजों के नाम हैं। भगवान श्री कृष्ण को कभी कभी माधव कहा जाता है क्योंकि मधु वंश में है, और उनको दसार वंश भी कहा जाता है, वार्ष्णेय भी कहा जाता है, वृष्ण वंश में उत्पन्न होने। तो इन्हीं ने पूर्वजों से आए हुए परंपरा में जो जन्म लिए थे उन जादुओं के द्वारा द्वारका सुरक्षित थी। गुप्तम, गुप्तम का अर्थ सुरक्षित। उनके विषय में श्री लसुत गोस्वामी कहते आत्मतुल्य बल ही, जादुओं का बल बस उनके ही तुल्य था, वैसे दूसरे में कहीं बल था ही नहीं। आत्मतुल्य, उनकी उपमा बस उन्हीं से दी जा सकती थी। इतना शास्त्रवेता बलवान, चूंकि भगवान के वे सब पार्षद हैं अतः उनके समान बलवान बुद्धिमान कोई नहीं, ऐसे जादुओं के द्वारा वह द्वारका सुरक्षित थी। जैसे नागों के द्वारा भोगवती, भोगवती पाताल लोक में एक नगरी है जहाँ नाग रहते हैं, बहुत समृद्ध नगरी है, स्वर्ग से अधिक धनी है, और नागों के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। बहुत विषैले नाग रहते हैं, उन्हें कोई उपद्रव नहीं कर सकते। नाग ही भोगवती निवा। इस विश्व में बहुत सुंदर सुंदर नगर हैं, उन नगरों के विषय में तो मानवों को कोई जानकारी ही नहीं है। मनुष्य तो केवल यही न्यूयॉर्क, सिडनी, मेलबोर्न और एले जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कोई नगर है इसको लोग नहीं जानते हैं। ये नहीं रह सकते ना। अब जैसे कोई व्यक्ति यह कहे कि जल के भीतर कोई रह ही नहीं सकता है, क्यों नहीं रह सकता? जल के भीतर भीतर तो अनंत जलचर है। स्वर्ग में और पाताल लोक में इधर उधर इस पृथ्वी से कई गुना अधिक धनी नगर है। यहाँ तो सब ईंट लकड़ी पत्थर का घर बनता है, उधर तो केवल रत्नों से बनता है। रत्न की वेदियां बनाई जाती हैं, खंभा, सब कुछ। श्रीमद् भागवतम प्रमाण, ऊपर इंद्र देव जहाँ रहते हैं उस नगर का नाम है, उस पुरी का नाम है अमरावती। वरुण देव जी जिस नगर में रहते हैं उसका नाम है विभावरी। कुबेर जी रहते हैं उसका नाम है अलकापुरी। और नागों की जो पुरी है उसको भोगवती कहते हैं। इसका नाम इसीलिए भोगवती है कि वहाँ प्रचुर भोग है। इसलिए उसका नाम भोगवती कहा गया। द्वारका की समृद्धि का वर्णन करने के लिए और उसकी सुरक्षित स्थिति का वर्णन करने के लिए सूत जी कहते हैं कि जैसे नागों के द्वारा सुरक्षित भगवती है, वैसे द्वारका सुरक्षित। अब द्वारका के वैभव का वर्णन कर रहे हैं। सर्वर्तु सर्व विभव पूर्ण वृक्षलताश्रम ही उद्यानोपवनारामय वृत पद्मा करश्रियम। वहाँ के जो भी वृक्ष हैं, लताएं हैं, सभी ऋतुओं में सर्व वैभव से युक्त हैं। वृक्ष और लता का वैभव क्या है? फल और पुष्प। द्वारका के जितने भी वृक्ष हैं और लताएं हैं, वे सभी ऋतुओं में सब प्रकार का फल फूल देते हैं। सर्वर्तु सर्व विभव, सभी ऋतुओं में सब वैभव देते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसे वृक्ष नहीं है जो सभी ऋतुओं में फल फूल दें। हम तो सुनते हैं इधर के वृक्ष जाड़े में पत्ता भी धारण नहीं करते हैं, सब शून्य हो जाते। बाद में गर्मी में पत्ता लगता है। भगवान के धाम में द्वारका में जितने वृक्ष थे, सब प्रकार के पुष्प और फल सभी ऋतुओं में लगे रहते हैं। पूर्ण वृक्ष लता आश्रम है, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष उसमें है। और लताश्रम, लताश्रम का अर्थ है लता मंडप। द्वारका भरी है जहां तहां लता से मंडप बन गया है। कहीं कहीं हम लोग देखते हैं भारतवर्ष में बहुत से लताओं के मंडप बने रहते हैं, जिनके भीतर लोग बैठते हैं, विश्राम करते हैं। लताश्रम कहते हैं, लताएं ही बढ़ करके घर बन जाती है, इसको लताश्रम या लता मंडप कहते हैं। द्वारका इस तरह के लता मंडपों से और पुण्यवान वृक्षों से भरी हुई, सब लताएं फल और पुष्प से समृद्ध रहती हैं और उनमें बहुत सुगंध रहता है। बिना गंध वाले फूल तो द्वारका में एक भी है ही नहीं, सब में सुगंध है, पुष्प है, फल है, सब है। ऐसे ऐसे उद्यान है वहाँ, उद्यान उपवना रामाय। उद्यान का अर्थ है फल प्रधान बगीचा और उपवन का अर्थ होता है पुष्प प्रधान बगीचा। और आराम का अर्थ है छोटे छोटे तलैया, सरोवर, जैसे उसमें भरे पड़े हैं। और ये आराम का एक अर्थ होता है पार्क, समझना, जहाँ लोग घूमते हैं, विश्राम करते हैं। वह द्वारका भरी हुई है अनेक उपवनों से, अनेक उद्यानों से। और वहाँ के जो पद्माकर हैं, पद्माकर का अर्थ है सरोवर, जिनमें कमल गह गह खिले रहते हैं, खिले हुए हैं। तो ऐसे सरोवरों की सुंदरता से वह द्वारका युक्त है। ऐसे ऐसे सरोवर हैं जो पद्मों के आकर हैं, कमल के खजाना हैं। सब जगह कमल खिले हैं और ऐसे बहुत से सरोवर द्वारका में हैं। इसके द्वारा यह वर्णन किया गया कि द्वारका में हमेशा सुगंधित वायु फैला रहता है कमलों को लेकर, और शीतल, चूंकि सरोवर बहुत हैं इसलिए सुगंधित हवा वहाँ है, शीतल हवा है और सुगंधित हवा है। गोपुर द्वार मार्गे सो कृत कौतुक तोरणाम। गोपुर द्वार मार्ग सुकृत कौतुक तोरणम, गोपुर मार्ग और द्वार मार्ग, अथवा गोपुर द्वार और मार्गों में। गोपुर कहते हैं पूर्व द्वार को। पूर्व द्वार का अर्थ है पहले के नगरों में, नगर में प्रवेश करने के लिए गेट बने होते थे। जैसे आज भी दिल्ली में हम लोग सुनते हैं अजमेरी गेट है, काश्मीरी गेट है, कई कई गेट बने होते थे और बहुत बड़ी चहरदीवारी होती थी, बाउंड्री होती थी, सभी प्रवेश नहीं कर सकते। तो जहाँ प्रवेश द्वार होता था शहर में, उसको गोपुर कहा जाता है। और द्वार का अर्थ है घर में जब प्रवेश करते हैं जिसमें अर्थ उसको द्वार कहते हैं। गोपुर और द्वार इन पर कृत कौतुक तोरणम, बहुत से उत्सव के दृश्य सजाए गए थे द्वार द्वार पर, बहुत अच्छा अच्छा दृश्य अलंकार किया गया था, चित्रकारी की गई थी, द्वार सजाए गए थे। यह भगवान के जाने पर ही सजाई गई थी द्वारका, ऐसी बात नहीं है, नित्य ही ऐसी सजी रहती थी और रोज रोज सजाई जाती थी प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि भगवान आने वाले हैं इसलिए, भगवान को आने की खबर भी नहीं है। द्वारका इस तरह चिन्मय नगरी है भगवान की, इस तरह सजी रहती है, रोज रोज सजाया जाता है। तो नगर के प्रवेश द्वार पर और घर के प्रवेश द्वार पर और मार्गों में बहुत सजावट की गई थी। कृत कौतुक तोरणाम चित्र ध्वज पताकाग्र अंत प्रतिहतात्म, और द्वारका में इतने झंडे बड़े बड़े लगाए गए हैं, इतने ज्यादा हैं कि उससे अंत प्रतिहत आतपाम, द्वारका के गलियों में भीतर कहीं भी घाम नहीं लग रहा है। इतने पताका इतने झंडा फहरा रहे हैं कि वे सूर्य के प्रकाश को रोक देते हैं। प्रतिहत आतपाम, आतप घाम नहीं आ रहा है। चित्र ध्वज पताका, विभिन्न प्रकार के ध्वज और विभिन्न प्रकार के पताका फहरा रहे हैं, इतना ज्यादा फहरा रहे हैं कि घाम नहीं आता कहीं। प्रतिहत आतपाम वो नगर है इस तरह। सम्मार्जित महामार्ग रथ्या पड़क चत्वराम सिक्ताम गंध जल रूपताम फल पुष्पाक्षतांकुरही, और सम्मार्जित हमेशा रहते हैं द्वारका के जितने भी महामार्ग हैं। महामार्ग का अर्थ है राजपथ, बड़े बड़े रोड, और रथ्या का अर्थ है बड़े बड़े रोडों से जो रोड निकलते हैं छोटे छोटे, उनको रथ्या कहते हैं। महामार्ग सब क्लीन है, बिल्कुल स्वच्छ धोधा करके, और रथ्या छोटे छोटे मार्ग भी बिल्कुल ठीक है। रथ्या आपणक, आपणम का अर्थ है बाजार, बाजार के जो मार्ग हैं वहाँ भी कोई ऐसा नहीं है कहीं केले का छिलका फेंका हुआ है कहीं कुछ, नहीं बिल्कुल स्वच्छ है। सिक्ताम गंध जल, वह नगरी द्वारका सुगंधित जल से सिक्त है, सुगंधित जल का छिड़काव किया गया, जो जल आजकल आदमी को देह पर डालने को नहीं मिलता। हम लोग स्नान करते हैं तो क्या करते हैं, बस यही साधारण जल से नहा लेते हैं। कलयुग में यही होगा, द्वादश स्कंध में कहा गया है कि स्नानम एव प्रसाधनम, कलयुग में लोग जल से स्नान को ही प्रसाधन मानेंगे, और स्नान सुगंधित तेल से स्नान या उबटन लगाना या कई तरह से ये कौन कर रहे हैं। दूसरे का बनाया हुआ साबुन लगा लिया, गंदा वस हो गया। स्नानम एव प्रसाधनम, स्नान ही बस बहुत भारी साधन माना जाए जल से स्नान। द्वारका की गलियों में, बाजार में, राजपथ पर या रथ या छोटे छोटे सड़कों पर सब जगह सुगंधित जल का छिड़काव किया गया है। सिक्ताम गंध जल है, उत्ताम फल पुष्पाक्षतांकुर, और सर्वत्र फल पुष्प अंकुर और अक्षत ये सब विकीर्ण किए गए हैं मंगल के लिए, इनको देख करके मनुष्य का मंगल होता है। सब जहां तहां बिखेरे गए हैं द्वार द्वार पर। अक्षत का अर्थ है बिना टूटा हुआ चावल, पूरा पूरा चावल होता है उसको अक्षत कहते हैं, छत का अर्थ टूटा है और अक्षत टूटा हुआ चावल नहीं। और अंकुर, अंकुर उसे तात्पर्य है जैसे गेहूं का अंकुर, जव का अंकुर जगह जगह दिखे रहे हैं। कहीं नहीं पाएंगे कि द्वारका में कोई अंडा का छिलका गिरा हुआ है, नहीं। यही सब चीजें मंगलमय द्रव्य बिखेरे गए कहते, फल पुष्प अक्षत और अंकुर। फल केला आदि के सब जगह सजाए गए हैं, बिखेरे गए, पुष्प अक्षत और अंकुर, और सारे मार्ग बहारे गए हैं, साफ हैं, सुगंधित जल का छिड़काव किया गया है। द्वारी द्वारी गृहाणाम च दब्धक्षत फलेक्षुभि अलंकृतां पूर्णकुम्भैर बलिभिर् धूपदीपकैः। द्वारी द्वारी च गृहाणाम च, घरों के द्वार द्वार पर, इसका अर्थ प्रत्येक द्वार पर फल दधि दब्धक्षत क्या है, फलेक्षुभि, दध्यक्षत फलेक्षुभि, दही अक्षत फल और गन्ना ईख, इनसे अलंकृत ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं। वास्तव में यही देखने लायक और खाने लायक वस्तुएं हैं। दही अक्षत फल और इच्छु, इन सबसे वो अलंकृत है नगरी। द्वारी द्वारी द्वार द्वार पर सजाए गए, अलंकृता पूर्ण कुंभ है। पूर्ण कुंभ का अर्थ है कि जल से भरे हुए घड़े सजाए गए हैं, सोने के घड़े जगह जगह रखे गए हैं द्वार द्वार पर, इनसे अलंकृत है द्वारका। भगवान का अपना धाम है, वहां किस बात की कमी हो सकती है। कलश सजाए गए हैं, वे कलश है पूर्ण कुंभ, जल से भरे हुए। द्वारी द्वारी से गृहाणाम, घर घर के द्वार द्वार पर सब जगह बलभीर धूप दीप कई, और अनेक प्रकार के उपहार सजाए गए हैं, और धूप और दीपक, दीपक का अर्थ घी के दीपक जला जला करके रखे गए हैं, और धूप, धूप का अर्थ बहुत सी अगरबत्तियां जलाई गई हैं, बहुत सुगंधित धूप की कह। यह है द्वारका का वर्णन, ऐसे द्वारका में भगवान प्रवेश कर रहे हैं, यह वर्णन है। इसी जिस नगर में भगवान प्रवेश कर रहे हैं उसका वर्णन शुद्ध किए, अब वहाँ के लोगों का वर्णन करते हैं, कौन कौन किस तरह से कृष्ण के पास आया, तो सबका तो वर्णन नहीं किया जा सकता है, कुछ प्रधान लोगों का नाम रख रहे हैं। निशम्य प्रेष्ठमायांतम वसुदेवो महामनः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुत विक्रमः प्रदुम्नश्चारुदेशनश्च साम्बोजाम्बवती सुत प्रहर्ष वेगो छसित शयनासन भोजनः वारणेन्द्रम पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः स सुमंगलैः शंखतुर्जनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृतः प्रत्युज्जगमूरथैर्हृष्टा प्रणयागत साध्वसः साध्वसः। यहाँ तक एक अन्वय है श्लोकों का। वसुदेव जी ने सुना, प्रेष्ठम आयांतम, कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय कृष्ण आ रहा है, ये सुना उन्होंने, कृष्ण आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा है कि कृष्ण आ रहे हैं, गोविंद आ रहे हैं, प्रेष्ठम आयांतम। वसुदेव जी ने सुना कि प्रेष्ठम आयांतम, कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय आ रहे हैं। वास्तव में वसुदेव जी के लिए या अक्रूर जी के लिए, उग्रसेन जी के लिए, भगवान श्री राम के लिए, बलराम जी के लिए, श्री कृष्ण अरबों खरबों प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इसीलिए सूत जी यहाँ प्रेष्ठम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, प्रिय। जीना कितना प्रिय है व्यक्ति को, कल मैं उदाहरण दिया था सांस लेने का, इससे कोटि कोटि गुना कृष्ण प्रिय हैं वसुदेव जी को। जब वसुदेव जी ने सुना प्रियतम आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, तो ये जो कार्य कर रहे थे उसको तुरंत छोड़ दिए, प्रहर्ष बेगो छसित शयनासन भोजन, प्रहर्ष से उच्छसित, उच्छसित का अर्थ उल्लंघित, छोड़ दिए, शयन आसन भोजन, कोई जो लेटे हुए थे लेटना छोड़ दिए, भोजन कर रहे थे भोजन करना छोड़ दिए, आसन बैठे थे बैठना छोड़ दिए, तुरंत चल दिए, तुरंत सजाने लगे, यह कृष्ण को देना है, ऐसे अगवानी करनी है, तुरंत चल दिए, एक सेकेंड भी कार्य की पूर्णता पर ध्यान नहीं दिए, ऐसा नहीं सोचे हाँ थोड़ा फोन आया है आवश्यक इसको पूरा कर लेते हैं तो चलेंगे, नहीं नहीं, भगवान के दर्शन के लिए उनके स्वागत के लिए जो भी कार्य कर रहे थे उसी समय छोड़ दिए, कोई भी कार्य हो, चाहे कोई यज्ञ कर रहा हो या भोजन कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो उसी समय छोड़ दिया, इतना आनंद हुआ सुन करके कि अब वो भोजन शयन आसन का आनंद उसके आगे कुछ भी नहीं, सब छोड़ दिए, महामना उनके मन में उल्लास छा गया, महामना सबके लिए लगेगा विशेषण। तो सबसे पहले गुरुवर्ग का नाम दिया जा रहा है जो श्री कृष्ण से संबंध में बड़े हैं, वसुदेव जी, अक्रूर जी, उग्रसेन जी और भगवान श्री राम, ये चार का नाम यहाँ ले रहे हैं। और चकार से अनुक्त समुच्चय, चौस जो शब्द दिया जा रहा है तो उसके द्वारा जिनका नाम यहाँ नहीं लिया गया है उन सबको भी गृहित कर लिया गया है, अनुक्त समुच्चय, अनुक्त का अर्थ जिनको नहीं कहा गया है उन समुच्चय सबके लिए चौथा प्रयोग किया गया, ये समझना चाहिए। प्रदुम्न, प्रदुम्न ये भगवान के सबसे बड़े पुत्र थे, चारुदेशनश्च, चारुदेशन भी पुत्र हैं, और सांबो, सांब जो जामवती के पुत्र हैं, इस तरह से भगवान की तो अनेक पत्नियां थी, उनमें से मुख्य पुत्रों का नाम लिया गया, और चकार से और सारे पुत्र अधिगृहित होते हैं, इस तरह यह संस्कृत भाषा की विशेषता है। कहीं कहीं च शब्द का अर्थ होता है अपि भी, कहीं च शब्द का अर्थ होता है जिनका नाम नहीं लिया गया वो सब, कहीं च का अर्थ विरुद्ध भी होता है। यहाँ चकार शब्द का अर्थ है कि और जिनका नाम नहीं लिया गया वे सभी, और सबके लिए महामना, महामना का अर्थ होता है जिसके मन में बहुत आनंद छा गया हो, उदारता बढ़ गई हो, उसको महामना कहते हैं। निशम्य पृष्ठम आयांतम, आयांतम पृष्ठ, प्रियतम आ रहा है, कृष्ण आ रहा है, ये सुनते ही बहुत मन में उल्लास छा गया। तो वसुदेव जी, अक्रूर जी, उग्रसेन जी और बलराम जी तथा प्रदुम्न, चारुदेशन और सांब, ये सब प्रहर्ष बेगुच्छसित, प्रहर्ष बेग, इतना प्रहर्ष हुआ, इतना आनंद हुआ कि उच्छसित, त्याग दिए उसी समय, क्या क्या, शयन आसन भोजन, शयन छोड़ दिए। सोना कितना प्रिय आदमी को लगता है, आजकल के तो लड़कों को जगाइए भोर में तो कहते हैं पाँच मिनट डेली और छोड़ दो, पाँच मिनट करते करते घंटों बीत जाता है, नहीं उठते। और भोजन एक कौर खाया है आदमी वो छोड़ करके भागेगा नहीं, भोजन बहुत प्रिय लगता है, बैठा है। लेकिन वो लोग कोई भी कार्य कर रहे थे तुरंत छोड़ दिए, इच्छा से तुरंत उल्लंघित कर दिए, और तुरंत ही वारणेन्द्रम पुरस्कृत, एक सुंदर श्रेष्ठ हाथी को आगे करके सजा करके भगवान के स्वागत के लिए चल दिए। सब लोग रथ पर चल रहे थे, रथ पर क्यों चल रहे थे कि शीघ्र कृष्ण के पास पहुंच जाए, द्वारका बड़ी नगरी है ना, तो वो प्रवेश भी किए होंगे तो दूर होंगे, रथ से जाना है ना, जैसे यहाँ के लोग कार से चलते हैं कहीं भी जाना है कहीं से, द्वारका के लोग ऐसे रथ से चलते हैं, भगवान का स्वागत करने के लिए चल दिए। वारणेन्द्रम पुरस्कृत, हाथी को आगे करके मंगल के लिए होता है, किसी जुलूस में शोभा यात्रा में हाथी ले जाया जाता है, जिसके पास हाथी नहीं रहता है वो हायर करके हाथी ले जाते हैं, देखा गया है आज। वारणेन्द्रम पुरस्कृत, पूरा कार्य आगे, कृत्य करके करके सामने करके आगे करके, ब्राह्मण ससुमंगल और ब्राह्मणों को भी आगे किए, ब्राह्मण चल रहे थे, ससुमंगल सुमंगल की वस्तुएं हाथ में लिए थे, जैसे नारियल या कोई पुष्प जो मंगल करता है, और शंख तूर्ज मिना देना, शंख तूर्ज आदि बज रहे थे, जोर से बजने लगे, और ब्रह्म घोषण चादरता, ब्रह्म घोष का अर्थ है मंत्र पाठ, वेद के मंत्र पढ़े जा रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ब्रह्म घोष का अर्थ है वेद के मंत्रों का घोष, अथवा ब्रह्म घोष का अर्थ है स्पिरिचुअल साउंड, स्पिरिचुअल आवाज। ये महामंत्र का जो उच्चारण है यह प्राकृत नहीं है, हम लोगों को ऐसा नहीं समझना जैसे और हल्ला होता है ऐसे यह भी हो रहा है, और सब जो हल्ला है वो प्राकृत जगत का है, और यह जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है। गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकेत, यह गोलोक का शब्द, जैसे हम लोग कई शब्द सुनते हैं, कोई बच्चा बोल रहा हो बाहर तो हम लोग कहेंगे कोई बच्चा बोल रहा है, लेकिन यहाँ अगर रेडियो बोल रहा है तो हम लोग हो सकता है कहें कि बीबीसी लंदन का है, ये वहाँ का शब्द है, ये यहाँ पास का नहीं है, बीबीसी लंदन का है या जहाँ का न्यूयॉर्क का हो या इंडिया का, भारत का, दिल्ली का, बम्बे का। तो बहुत से साउंड भरे पड़े हैं इस जगत में, शब्द हैं, लेकिन भगवान के जो नाम हैं इस जगत में वे सब गोलोक से आए हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हैं, यहाँ का प्रोडक्ट नहीं। ऐसा नहीं सुना चाहिए कि रा और म मिला करके राम बना दिया गया ये सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए, तो इसको ब्रह्म घोष कहते हैं किसी की अगवान। आजकल तो भारतवर्ष में भी लोग विवाह आदमी बस सिनेमा का गीत बजा देते हैं, माया घोष कहते हैं, ब्रह्म घोष नहीं है, और अमंगल हो जाता है भगवान के नाम का कीर्तन या कोई गीत गाया जाए, मंत्र बोला जाए, तो ब्राह्मण जो चल रहे थे वे ब्रह्म घोष कर रहे थे, किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के मंगल के लिए, ये सुखपूर्वक आ गए हैं द्वारका में, सुख से रहे, उनके मंगल के लिए ब्रह्मघोष किया जा रहा सदा वर्णन है भागवत में, सब जगह वर्णन है, किसी शुभ अवसर पर वेद मंत्रों का पाठ किया जाता था, तो वेद में जितने भी मंत्र हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ मंत्र यही है, इसीलिए इसको महामंत्र कहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और वह भी प्रभुपाद जैसे महान वैष्णव के मुख से सुनाई पड़े तो और मंगल होते, बजाना चाहिए तो प्रभुपाद जी के मुख से सब नाम बजाना चाहिए, तथा कथित गायकों के मुख से नहीं, शुभ अवसर पर फेस्टिवल में ऐसे होना चाहिए, श्रेष्ठ वैष्णवों के मुख से नाम निकला है तो और अच्छा। तो ब्राह्मण चल रहे थे तो वेद घोष कर रहे थे, शंख तुरही आदि बाजे बज रहे थे, प्रति जगमुह रथैर हृष्टा प्रणयागत साधु सा, प्रणय का अर्थ स्नेह, स्नेह से उनमें घबराहट आ गई, घबराहट का अर्थ है कि समझ नहीं पा रहे थे इसमें क्या ले चलें क्या करें, जल्दी जल्दी में वे स्नेह में विकल हो रहे हैं, रथ पर चढ़ करके चले, रथ हृष्टा बहुत हर्षित थे, प्रतीक जगने श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए सब लोग चले। ध्यान रखना चाहिए कि इनमें जिन जिन लोगों का नाम गिनाया गया है भगवान से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं, वसुदेव जी भगवान के पिता हैं और क्रूर जी चाचा हैं और उग्रसेन जी नाना यही राजा थे द्वारका के, और भगवान श्री राम तो खास बड़े भाई ही हैं, और तीन पुत्रों का नाम लिखा गया है, प्रद्युम्नश्चारु दशमश्चर सांबो जम्बवती सुतः, और सारा समाज चल रहा है, लेकिन किसका किसका नाम कहा जाए, इसलिए चकार से सबको गृहित कर लिया गया। सभी चल रहे। वार मुख्याश्च सतसो जानैस्तद् दर्शनोत्सुका लसत कुंडल निर्भात कपोल बदन श्रियहा श्रियः। और इसके साथ ही जब भगवान के स्वागत के लिए सब लोग चल रहे हैं, देखिए ये लोग तो भगवान के देह के संबंधी हैं, पर द्वारका में कोई भी व्यक्ति कृष्ण को अपने प्राणों से अधिक मानता था। वहाँ की वारांगनाएं चल रही हैं, वहाँ की नर्तकियाँ सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों निकली घर से भगवान का स्वागत करने के लिए। बार मुख्या से सतसह जाने तब दर्शन हो, यानों से चल रहे थे। यान का अर्थ है पालकियों पर चढ़ करके चल रहे थे। अथवा दूसरा कोई यान होगा जिसमें सूत गोस्वामी देख रहे हैं कि उनके कपोल कितने सुंदर हैं, उनके कुंडल कितने सुंदर हैं। लसत कुंडल निर्भातक कपोल बदनशील, इन वारांगनाओं के मुख बहुत सुंदर हैं और कुंडल से उनका गाल झलमिल झलमिल कर रहा है। ये सूत गोस्वामी जी वर्णन करते हैं भगवान के स्वागत में चलती हुई वारांगनाओं के सौंदर्य का वर्णन किए। यह वर्णन करके अब कहते हैं नट नर्तक गंधर्व सूत मागध बंदिनः गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितानद्भुतानि च। और नट नर्तक गंधर्व सूत मागध और बंदी ये लोग उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्र को गा रहे थे। नट का अर्थ होता है रसाभिनय चतुरा, जो कोई चीज गाया जा रहा है उस गान के अनुसार जो लोग भाव बताते हैं अभिनय करते हैं उनको नट कहा जाता है। कि जो भगवान की लीलाएं गाई जा रही थी, मान लीजिए भगवान की ब्रज लीला गाई जा रही हो, तो ये जो नट थे वे लोग भगवान जैसे बांसुरी बजाते हैं वैसे बांसुरी बनाने का भाव दिखा रहे थे या अभिनय कर रहे थे, उनको नट कहते हैं। नट नर्तक, और नर्तक का अर्थ है ताल राग आदि स्वर के अनुसार जो नाच रहे थे। नाचना अलग चीज है और अभिनय करना अलग चीज है। तो कुछ लोग अभिनय कर रहे थे, कुछ नाच रहे थे, भगवान को दिखाया जा रहा था। नट नर्तक और गंधर्व, गंधर्व का अर्थ है कुछ लोग गा रहे थे, आलाप ले रहे थे। गंधर्व का अर्थ ही नहीं समझना चाहिए कि स्वर से गंधर्व आ गए। गंधर्व का तत्पर जो है गा रहे थे, अभिनय कर रहे थे कुछ लोग, कुछ लोग नाच रहे थे, कुछ लोग गा रहे थे। सूत माघ बंधु न सूता पौराणिका प्रोक्ता मागधा वंश संस कह बंदिनस को अमल प्रज्ञा प्रस्ताव सदृश होता। सूत का अर्थ होता है जो पुराणों से कथा कह रहे थे, पुराणों से गीत गा रहे थे, पौराणिक गाथाओं को जो गाते हैं उनको सूत कहते हैं। और मागध उसे कहते हैं जो किसी राजा के वंश की प्रशंसा करते हैं। बंदी का अर्थ है जो उस प्रस्ताव के अनुसार जैसा अवसर है उसके अनुसार तत्काल बोलते हैं, उनको बंदी कहते हैं। इन तीनों के लिए अमल प्रज्ञ शब्द का प्रयोग किया गया है। चीजें बहुत शुद्ध बुद्धि के होते हैं। इस तरह देखिए छह विभाग है, अभिनय कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ नाच रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, और कुछ पुराणों से गाथाएं कह रहे हैं, कुछ वंश की प्रशंसा कर रहे हैं, और कुछ उस प्रस्ताव के अनुसार कि आहा द्वारकाधीश कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, प्रस्ताव के अनुसार बोल रहे हैं, गा रहे हैं। गायन के चोत्तम श्लोक चरितान अद्भुत आने का, भगवान के अद्भुत अद्भुत चरित्र को गा रहे हैं। अद्भुत चरित्र में जैसे परीक्षित की रक्षा, महाभारत युद्ध में पांडवों की रक्षा, या और भी ब्रज में जो भगवान ने किया है, सब अद्भुत चरित्र। अद्भुत का अर्थ है अलौकिक, लोक में ऐसा कोई कर नहीं पाता। ये सब गान हो रहा था और भगवान से अब सब लोग मिलते हैं, कैसे कैसे भगवान सबसे मिले इसका वर्णन सूत जी करते हैं। भगवान तत्र बंधु नाम पौराणाम अनुवर्ति अनुवर्ति नाम जथा विद्ध प्रसंगम या सर्वेशा मानम आदत है, भगवान सबका मानम आदत है, सबका सत्कार किए। ये प्रश्न हो सकता है कि एक व्यक्ति और लाखों लोगों का स्वागत कैसे स्वीकार कर लिया और कैसे सबको मान दिया। इसीलिए सबसे पहले कहते हैं भगवान, कि भगवान है। जितने लोग थे उतने रूप प्रकट करके सबको मान दिया भगवान। प्रत्येक व्यक्ति यही समझ रहा था कि कृष्ण हमको देखकर हंस रहे हैं या हमें से हाथ मिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान है, भगवान के लिए कोई प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती कि दो चार दिन या दो चार महीना लग जाए एक एक आदमी से मिलने में। भगवान तत्र पौराणम, पौराणम का अर्थ है द्वारका में जो रहते थे। बंधु नाम, बंधु नाम का अर्थ है जो भगवान के संबंधी थे। पूर्वासियों से भगवान मिले, बंधुओं से मिले, और अनुवर्ती नाम और जो भी उनके सेवक आदि थे वहाँ अनुगामी थे। जथा विधि उपसंगम, जथा विधि का अर्थ है कि जैसी लोक में विधि है, संबंध के अनुसार, आयु के अनुसार, सामाजिक स्थिति के अनुसार, जैसे जिससे मिलना चाहिए उस विधि से संगम्य उपसंगम्य बहुत अच्छी तरह से संगम करके मिल करके सर्वेशा मानम आदधे, सबका मान रख। जो जैसा चाहता था भगवान से वो भगवान ने किया। इसी को आगे सूर्य जी कह रहे हैं, प्रहवाभिवादना श्लेष करस्पर्श करस्पर्शस्मित क्षण ही आश्वास चाष्पाक्य बरश्चाभिमतैर विभु। विभु सर्वसमर्थ है श्री कृष्ण, बहुत हो गए थे, जितने लोग थे द्वारका में उतने बन गए। विभु शब्द का अर्थ यहाँ ये है। तो किसी किसी को भगवान ने सिर झुकाकर प्रणाम किया, इसको प्रहवा कहते हैं। प्रहवा जब सिर झुका करके चरण में रह करके या थोड़ा भी झुका करके प्रणाम किया जाता है तो इसको प्रहवा कहते हैं। और अभिवादन का अर्थ होता है वचन से प्रणाम। किसी किसी को भगवान ने वचन से प्रणाम किया, जैसे हम लोग करते हैं हरे कृष्ण, यह भी एक प्रणाम है वचन से, इसको अभिवादन कहा जाता है। और प्रहवा का अर्थ है सिर से प्रणाम, सिर झुकाकर। किसी किसी को श्री कृष्ण ने सिर झुकाकर प्रणाम किया जो बड़े थे। किसी किसी का वचन से अभिवादन किया, वचन से प्रणाम किया, ये लोग भी कुछ बड़े थे। और आश्लेष, आश्लेष का अर्थ है किसी किसी को देखकर श्री कृष्ण सीधे आलिंगन में लिए, जो भगवान के सम वयस्क थे। अथवा श्री कृष्ण के आलिंगन की जो कामना रखे थे, जानते हैं कि हम मिलेंगे तो श्री कृष्ण से ऐसे मिलेंगे, वहाँ प्रणाम आदि की बात नहीं होती। जैसे अर्जुन जब हस्तिनापुर में भगवान मिलते थे तो अर्जुन उनको कभी प्रणाम नहीं करते हैं, न तो भगवान उनको प्रणाम करते हैं। बिल्कुल समान संबंध है, इसलिए दोनों हृदय से मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि फिर बाद में अर्जुन प्रणाम करें, नहीं। वो साक्ष्य रहता है। तो प्रहवाभिवादनाश्लेष, आश्लेष का अर्थ है आलिंगन, विश्लेष का अर्थ होता है वियोग। तो आश्लेष, किसी किसी का आलिंगन किया भगवान ने। प्रहवाभिवादनाश्लेष करस्पर्श, किसी किसी से भगवान ने हाथ मिलाया, हाथ से हाथ मिलाया। और किसी किसी का स्मित क्षण, मुस्कुरा करके किसी पर देख दिया। जैसा जो चाहता था वैसा स्वागत भगवान ने किया। किसी से हाथ मिलाए, किसी का आलिंगन किए, किसी पर देख करके मुस्कुराए। आश्वास चाश्वपाकेभ्य अश्वपाकेभ्य, चंडाल तक जो कुत्ते का मांस खाने वाले वंश में जन्म लिए थे, वहाँ नहीं खाते थे द्वारका में, लेकिन मतलब उस वंश में जन्म लिए थे, इन लोगों तक को भगवान ने आश्वासन दिया, अभय दान दिया, प्रेम दिया। ये है भगवान का सौशील्य, उनकी सुशीलता। सज्जन शिरोमणि है भगवान, सबे सर्वेशा मानम आदत, जैसे पहले कहे गए, सबको मान दिया। स्वपाक, स्वपाक का अर्थ होता है स्व का अर्थ कुत्ता, पाक का अर्थ खाने वाला। भगवान ने कुत्ता तक खाने वाले के वंश में चंडाल से भी प्रेम से मिले, सबका मान रखा, क्योंकि उनकी दृष्टि में सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं। इस तरह से भगवान की यह सर्वशक्तिमत्ता है कि सबसे मिल लिए, सबका स्वागत स्वीकार किए, सबका विरह ज्वर कम कर दिए। कई बार शास्त्रों में इस तरह के शब्द आते हैं कि कोई चंडाल के वंश में भी जन्म लिया है वह अभी शुद्ध हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी बारम्बार अनुवाद किए हैं कि डॉग ईटर, डॉग ईटर के परिवार में जन्म लिया है लेकिन फिर भी भगवान की शरण ले, किसी साधु का संग करे तो वह पवित्र हो जाता है, अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। परंतु डॉग ईटर क्या काऊ ईटर तक तर सकते हैं? तो मनुष्यों की जो सबसे न्यूनतम श्रेणी मानी गई है, सबसे छोटी, वो डॉग ईटर तक है। कल जो प्रश्न होता है कि काऊ ईटर, वो तो मनुष्य है ही नहीं, मनुष्यों में उनकी गणना नहीं की जाती है, जो कोई पिशाच राक्षस आदि है गाय खाते हैं, इनकी गणना ही नहीं है मनुष्यों में। लेकिन ऐसे लोग भी भगवान की शरण में आने पर वैष्णवों की कृपा से तर जाते हैं, शुद्ध हो सकते हैं। यहाँ भगवान के विषय में ये बात बताई जा रही है कि ये सबका मान रखे, जैसा चाहते बरई चाभी मतर भी हो, बरई वरण वरह का अर्थ वरण, कोई जो चाहता है, कोई व्यक्ति कुछ चाहता है तो उस चाह को वर कहते हैं। कि जो जो चाहता था, किसी किसी की यही इच्छा थी कृष्ण हमारे तरफ देखें, कृपा दृष्टि से भगवान उसके तरफ देखे, जिसकी यह इच्छा थी कि भगवान हमको आलिंगन मिले तो उसको आलिंगन मिले, किसी किसी की यह अभिमति थी कि कृष्ण हमको प्रणाम करेगा, बहुत सुशील लड़का है तो भगवान उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रभाविवादना श्लेष करस्पर्शस्मित क्षण आश्वास चाश्वपाक्य वरिष्ठाभिमत विभि, जो जैसा चाहता था वैसा भगवान ने किया, जो जैसा चाहता था, जो वस्तु चाहता था भगवान ने दिया, इस तरह से मिले। और स्वयं च गुरुभि विप्रय सदारे स्थविर रति आशीर्भिद यजमान बंधुश्चा विषपुरम। इस तरह से भगवान ने सबको आदर दिया और स्वयं आशीर्वाद लिया। किसका आशीर्वाद? विप्रई ब्राह्मणों का आशीर्वाद और गुरुजनों का आशीर्वाद। गुरुजनों का आशीर्वाद से तात्पर्य है पिता का आशीर्वाद, चाचा का आशीर्वाद, उनको गुरु कहते हैं। ब्राह्मणों का आशीर्वाद, वे ब्राह्मण वृद्ध थे, स्थवीर थे, लेकिन फिर भी अपनी पत्नियों के साथ आए थे कृष्ण को देखने के लिए। यहाँ अपि शब्द का अर्थ ये है, स्वयं का गुरुभिर विप्रय सदारे स्थविराई रति, सदारे दारा का अर्थ पत्नी, अपनी पत्नियों के साथ बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण आए थे। बूढ़े ब्राह्मणों को क्या जरूरत थी जुलूस में आने की, लेकिन कृष्ण को देखने की, उनको आशीर्वाद देने की इतनी लालसा थी कि वे अपनी अपनी पत्नियों के साथ आ गए थे। स्थविर ही आती, स्थविर ही कहती है, स्थविर का अर्थ होता है जो एक जगह रहे, बूढ़े लोग प्राय घूमते नहीं हैं, लेकिन जो स्थविर थे, जो कहीं नहीं जाते थे, वे भी कृष्ण को देखने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए आए और उनको भगवान ने प्रणाम किया, उनका चरण छू करके प्रणाम किया, तो वे लोग आशीर्वाद दे रहे थे। आशीर्वाद विद्यमान, भगवान आशीर्वाद को ग्रहण कर रहे थे, कह रहे थे मैं आपकी कृपा से कुरुक्षेत्र के युद्ध में बच करके आया हूँ, आपका आशीर्वाद हमेशा काम करता है। इनके आशीर्वाद को सुनकर भगवान प्रसन्न हो रहे थे। स्वयं च गुरुभिर विप्रय, अपने पिता का आशीर्वाद, अपने चाचा का आशीर्वाद, नाना का आशीर्वाद, और भी बड़े बड़े लोग थे उनके लिए गुरु कह गए, उनका आशीर्वाद, ब्राह्मणों का आशीर्वाद और अन्य ही, और अन्य लोगों का भी आशीर्वाद भगवान ग्रहण कर रहे थे। और बंधुश्च आविशत पुरम, और बंदी जनों का आशीर्वाद ले रहे थे। बंदीजन ब्राह्मण होते हैं, वे आशीर्वाद सब दे रहे थे, भगवान उसको ग्रहण कर रहे थे। दूसरों को स्वयं भगवान मान दिए और इनको मान दिया, इनको आशीर्वाद दिए बड़े बड़े लोगों ने, उसको ग्रहण करते हुए प्रावेशपुरम नगर में प्रवेश किए। तो यहाँ तक प्रवेश का वर्णन किया गया। अब द्वारका की नारियों का वर्णन करते हैं। जैसे हस्तिनापुर की नारियों का वर्णन किया गया था, अब द्वारका की स्त्रियों का वर्णन कर रहे हैं। राजमार्गम गते कृष्ण द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्म्याडारुहुर्विप्र तदिक्षण महोत्सवः। हे विप्र, हे शौनक जी, सूत जी संबोधन करते हैं। 88,000 ब्राह्मण कथा सुन रहे थे, तो उनमें से जो श्रेष्ठ थे, प्रश्न करने के लिए नियुक्त किए गए थे उनके द्वारा, वे थे शौनक जी। सबसे बड़े वृद्ध थे, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध और भृगु वंश में उत्पन्न हुए थे। बीच बीच में उनको सूत जी संबोधन करते हैं। हे भित्र, हे ब्राह्मण, तदीक्षण महोत्सव, श्री कृष्ण का दर्शन ही जिनके लिए महा उत्सव है, ये द्वारका की कुलांगनाएं, कुलस्त्रियां, श्रेष्ठ कुल की स्त्रियां तुरंत ही कृष्ण को देखने के लिए ऊंचे ऊंचे महलों पर चढ़ गई। राजमार्गम गते कृष्ण, जब कृष्ण राजमार्ग पर चल रहे थे, जो मार्ग बहुत कंजस्टेड होता है, जिस पर सभी लोग चलते हैं, बड़ा मार्ग, तो ये जब चल रहे थे, रियल रथ यात्रा थी, भगवान रथ पर थे तो द्वारका की कुलस्त्रियां है, द्वारकायाः कुलस्त्रियां, द्वारका की श्रेष्ठ नारियां, हर्म्याणी आरुरुहु, हर्म्य का अर्थ ऊंचे ऊंचे भवन और आरुरुहु का अर्थ आरोहण कर गई, चढ़ गई तुरंत। कोई भी जो काम कर रहे थे, पति की सेवा, तो जो कि वो लोग तो चले ही गए थे, लेकिन कोई भी काम छोड़ करके ऊंचे भवनों पर चढ़ गई। तदीक्षण महोत्सव, ये कृष्ण को देखने की लालसा से, क्योंकि कृष्ण का दर्शन ही उनके लिए सबसे बड़ा सुख था, सबसे बड़ा। ईक्षण महोत्सव, ईक्षण का अर्थ दर्शन, और महाउत्सव, उत्सव का अर्थ था आनंद, उल्लास। सबसे बड़ा सुख उन स्त्रियों को इसी बात में था कि कृष्ण का दर्शन करते। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि द्वारका में भगवान तो नित्य रहते ही हैं, इतनी क्या विशेषता कृष्ण की है कि उनको देखने के लिए लोग इतना बेचैन रहते हैं? ऐसे तो हजारों बार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तो इतनी क्या उत्सुकता है? कोई भोजन छोड़कर दौड़ा उनको देखने के लिए, रिसीव करने के लिए, कोई शयन छोड़ करके, कोई कोई काम, कोई कोई काम, ऐसा और लोग तो दौड़े चलो पुरुष थे, इन स्त्रियों को क्या हो गया? ये क्यों पागल हो गई? क्या जरूरत है देखने की? हजारों बार तो देखी ही है कृष्ण को तो उसका उत्तर आ रहा है कि नित्यम निरीक्षमाणा नाम, सूत जी कहते हैं, नित्यम निरीक्षमाणा नाम जगति द्वार कौकसाम नैव तृप्यंत ही दृश श्रियो धामांगम अच्युतम। सूत जी ये कहते हैं, ये मान लीजिए शौनक जी प्रश्न करेंगे कि क्या इतनी उतावली हो रही है भगवान को देखने के लिए, आखिर देखी ही है हजारों बार, वो द्वारका में ही रहते हैं, उनको देखने के लिए क्या लालसा होगी? जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर रोज ही आता जाता हो, तो उसको देखने के लिए थोड़े कोई रोड पर खड़ा होगा, जो नहीं देखा होगा वो एक बार देखना चाहेगा या दो बार देखना चाहेगा। ये रोज रोज देखा करो, हमने देखा है भगवान को देखने की कैसी उत्सुकता होती है, श्री विग्रह को देखने की सबसे ज़्यादा लालसा में वृंदावन में देखते हैं, पूरे स्थान में। प्रतिदिन जो कृष्ण बलराम का पद खुलता है, तो एक नया उत्साह और एक नई लालसा लगती है, लगता है जैसे आज पहली बार देख रहे हैं कृष्ण बलराम को, आराधा श्याम सुंदर पहली बार, और प्रतिदिन बहुत उल्लास छाता है, वहाँ फूल बरसाए जाते हैं रोज, जीती का पट खुलता है तो रोज फूल बरसाए जाते हैं, कमर बुलाए जाते हैं, और प्रतिदिन हमें ऐसा अनुभव होता है कि आज यह अपने ढंग का दर्शन है, अपने ढंग का दर्शन है, और देखने के लिए लोग दौड़ दौड़ करके आते हैं, दर्शन करने हैं, दर्शन करने हैं। तो भगवान जब साक्षात प्रकट होंगे उनको देखने की कितनी लालसा होती है, इसीलिए वो स्त्रियां मानी नहीं, देखने के लिए चढ़ गई। नित्य निरीक्षमाणा नाम जगति द्वारकौ के साम, यद्यपि द्वारकौ के साम द्वारकावासियों द्वारकावासी नित्य निरीक्षमाणा नाम नित्य कृष्ण को देखते हैं, जैसे वृंदावनम परितेज पाद मुखम न गच्छति, वैसे श्री कृष्ण द्वारका भी छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। जो नित्यम कार थे बहुत दिन लगातार कई दिन नित्यम निरीक्षमाणा नाम जो कृष्ण को रोज देखते हैं, लेकिन नैव तृप्यंत ही दृश्य, इन देखने वालों की दृश्य आंख न एव तृप्यंत, नहीं ही तृप्त होती है, बल्कि जितना वे लोग देखते हैं उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है, उतनी ही भूख बढ़ती जाती है, क्योंकि श्री धमंग मचुतन श्री कृष्ण का जो अंग है वो सौंदर्य लक्ष्मी का धाम है, आश्रय है। श्री कृष्ण का प्रत्येक अंग इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि देखते देखते आंखें कभी तृप्त होती नहीं। इस संसार में तो कोई भी चीज आदमी देखता है तो देखने के बाद कुछ काल के बाद मन हट जाता है, हटाया, लेकिन भगवान इतने सुंदर है। श्रीय धामांगम, श्री का अर्थ शोभा सौंदर्य, धाम का अर्थ आश्रय, शोभा ने आश्रय लिया है भगवान के अंगों में, शोभा का वहां निवास है। तो ऐसे श्री कृष्ण के विविध अंगों को देखने में आंखें कभी नैव तृप्यन्ति, कभी भी तृप्त नहीं होती, ऐसी बुद्धि होती ही नहीं आंखों की कि अब देख लिया अब क्या देखें, कभी उबन नहीं है, कभी तृप्ति नहीं है। यद्यपि कि द्वारका की स्त्रियां बारंबार श्री कृष्ण को देखी हैं, नित्य देखती हैं, लेकिन फिर भी उनकी आंखें तृप्त नहीं थी, इसलिए वे उत्कंठा में चढ़ गए कृष्ण को देखने के लिए। इसी को विशेष विस्तार से शुद्ध जी कहते हैं, श्रियो निवासो जस्यो रह पान पात्र मुखम दृशाम बाहवो लोकपालानाम सारंगाणाम पदाम्बुजम। यही कारण है कि कुछ विशिष्ट लोग भगवान के अंगों पर किस तरह मणराया करते हैं कभी नहीं सोते हैं, जैसे श्री श्रियो निवासो जस्यो रह, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ सबसे विदुषी और सबसे धनी सबसे सौभाग्यवती महिला है श्री जी लक्ष्मी, लेकिन लक्ष्मी जी ने तो अपना डेरा ही डाल दिया है वक्षस्थल पर, वो तो हटते ही नहीं है। इतना अच्छा है भगवान का वक्षस्थल, भगवान के साथ इतना सुंदर कि लक्ष्मी जी ने तो वहां अपना निवास बना लिया। श्रीयो निवासो जस उरह, जस का अर्थ जिनका, जिनका उरह उरह वक्षस्थल, श्रीय निवास श्री का निवास है, श्री ने स्थान चुना, सबसे बुद्धिमती नारी है, भगवान को ही इसने चुना, भगवान के वक्षस्थल पर श्री जी रहती हैं। और पान पात्र मुखम दृशान, और जो लोग सौंदर्य का पान करना चाहते हैं, भगवान का मुख जो है वो सौंदर्य रस से भरा हुआ पात्र है। पान पात्रम मुखम दृशाम, आंखों के लिए, दृशाम का अर्थ है आंखों के लिए, भगवान का मुख है पान पात्र है, सौंदर्यामृत से भरा हुआ पात्र है। भगवान का मुख अगर एक पात्र है तो उसमें लबालब सौंदर्य भरा हुआ है, तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो सौंदर्य अमृत और भगवान का मुख दोनों अलग अलग है। जैसे हम लोग कटोरी में कोई चीज पीते हैं तो रस पी करके कटोरी छोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा भगवान का मुख नहीं है, उनका मुख और उसमें सौंदर्य दोनों एक ही है, वो कभी तृप्त नहीं हो सकता व्यक्ति, आंखें हमेशा भगवान के मुख पर रहना चाहते हैं। आंखों के लिए भगवान का बदनामुज जो है वो सौंदर्यामृत से भरा हुआ पात्र है, और बाहो लोकपाला नाम, और भगवान की भुजाएं लोकपालों का निवास है। लोकपाल का अर्थ है जीवों का पालन करने वाले इंद्र आदि देवता, ये सब भगवान की भुजाओं के आश्रय में रहते हैं। मतलब समस्त बल के निधान है भगवान की भुजाएं, सारे देवता जीवों का पालन करने वाले भगवान के भुजा के शरण में रहते हैं। और सारंगाणम पदाम्बुजम, सारंग कहते हैं, सारम गायंती इति सारंगा, जो सारम श्री कृष्णम गायंती इति सारंगा, जो सार सब कुछ के सारभूत श्री कृष्ण को ही गाते रहते हैं उनको सारंग कहते हैं। सारंग का भौरा भी होता है। जो भक्त हैं वे लोग भगवान के पदाम्बुज पर मर राय करते हैं। लक्ष्मी जी वक्षस्थल पर तो पूरा अधिकार ही कर दी है और देवराज इंद्र आदि भगवान के बाहों को पकड़े हुए हैं, आश्रय लिए हुए। जो सौंदर्यामृत पीना चाहते हैं भगवान के मुख पर दृष्टि गिराए रहते हैं, परंतु जो भक्त हैं सारंग है भगवान के चरण कमल पर, चरण कोमल को ही अपना धन मानते हैं, सारंगाणम पदाम्बुज। इस संसार में जितने भी आज तक विवेकी पुरुष हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, उन सब ने भगवान के ही चरण कमलों का आश्रय लिया। भगवान का एक एक अंग सब प्रकार की विशेषताओं से युक्त है, बल से, धन से, सौंदर्य से। लक्ष्मी जी जो धन की स्वामिनी है भगवान के वक्षस्थल में रह रही हैं, जो बल के निधान है इंद्रादि देवता भगवान के बाह में रह रहे हैं, और सारा सार विवेकी बुद्धिमान जो लोग हैं भगवान के चरण में रहते हैं, और सौंदर्य रसिक जो हैं वे अपने आँख को भगवान के मुख में लगाए रखते हैं। तो इस तरह भगवान सबके लिए परम आकर्षक हैं। अतः यदि द्वारका की स्त्रियां उनका दर्शन करने के लिए ऊँचे ऊँचे महलों पर चढ़ गई तो इसमें क्या अन्याय है, ये स्वाभाविक है। अरे मैं तो आज कथा पूरा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बह रहा हूँ, नहीं तो ऐसे ऐसे श्लोकों की बहुत देर तक व्याख्या होती है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि ये भगवान के चार अंगों का वर्णन किया गया यहाँ पर, और चारों जगह संसार के सबसे श्रेष्ठ लोग आश्रय लिए हुए। सारंग शब्द से तत्पर्य ज्ञानी भक्त भगवान के चरण में, और जितने बलशाली लोग हैं वो भगवान के भुजा में, जितने सबसे धनी जो स्त्री है भगवान के छाती में और सौंदर्य अमृत का जो पान करना चाहते हैं अपने आँखों को भगवान के मुख में लगाए रहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसीलिए द्वारका की स्त्रियाँ सारी लज्जा काम धंधा छोड़ करके श्री कृष्ण को देखने के लिए ऊँचे ऊँचे धूम को चढ़ गई। अब श्री कृष्ण जो राजपथ पर चल रहे हैं तो कितना सुंदर लग रहे हैं, इसका लगता है कि सूत गोस्वामी बिल्कुल फोटो उतार रहे हैं, ऐसा वर्णन करते हैं। सीता तपत्र व्यजने रूपस्कृत प्रसून वर्षैरभिवर्षित पथि पिशंगवासा वनमालया बभौ घनो जथार को दुत चाप वित। द्वारका के राजपथ पर चलते हुए भगवान कितना सुंदर लग रहे हैं। बभौ, बभौ का अर्थ है सुशोभा, श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये प्रश्न होगा कि सूत जी कहाँ से देख रहे हैं। जहाँ से श्री कृष्ण साफ साफ दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर मन से खड़े होंगे। कथा कहते समय कथावाचक भी अपनी स्थिति अपनी सीट देखता है कि मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से श्री कृष्ण को देख रहा हूँ वहाँ। अच्छा, कथा कहने वाला व्यक्ति तो केवल कृष्ण को ही नहीं, कृष्ण का दर्शन करने वाले सबको देखता है। स्त्रियाँ उधर खड़ी हैं, वसुदेव जी इधर हैं, उग्रसेन जी इधर हैं, या प्रद्युम्न इधर हैं, इधर आगे आगे हाथी चल रहा है, श्री कृष्ण बैठे हैं। और श्री कृष्ण बैठे हैं तो अर्जुन और सात्यकी और उद्धव जी साथ में हैं। सात्यकी और उद्धव चामर डुला रहे हैं कृष्ण पर, गोलाकार चामर है उसको डुला रहे हैं, पंखा झूल रहे हैं। और श्री अर्जुन जी छत्र पकड़े हुए हैं, स्त्रियां फूलों की वर्षा कर रही हैं दोनों ओर से, और भगवान जो माला लगाए हैं इस तरह से दोनों तरफ, दोनों गर्दन के दोनों तरफ वो माला बहुत सुंदर लग रही है ऐसे आई हुई है, और पीताम्बर इसको देख करके सेत जी हैं वर्णन कर रहे हैं। सीतात पत्र वेदनाय रूपस्कृत, सीत आत पत्र श्री कृष्ण के ऊपर उजला छत्र तना हुआ है, श्वेत छत्र, व्यजनय रूपस्कृत है और दोनों तरफ व्यजन दुलाया जा रहा है। श्री कृष्ण के ऊपर छत्र तना है, बगल में उजला दो व्यजन दुलाया जा रहा है, एक को सातकी जी दुला रहे, को उद्धव जी दुला रहे। प्रसून वर्ष अभिवर्षित है पथि, और रास्ते में शब्द का प्रसून बरसाया जा रहा है, प्रसून भी बहुत उज्ज्वल हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, ज्यादातर उज्ज्वल हैं प्रसून फूल, प्रसून का अर्थ फूल बरसाया जा रहे हैं। और पिसंग वासा, श्री कृष्ण पीला वस्त्र पहने हैं सांवले शरीर पर, और वनमालया और वनमाला लगाए हैं, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, जैसे घनो जथार को डुपचाप वैद्य, इसको अभूत उपमा अलंकार कहते हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं है लेकिन फिर भी उपमा दी जा रही है, ऐसा कभी होगा न हुआ है। जथा घन अर्क उडुप चाप वैद्युत, इसे जी कहते हैं भगवान ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे एक सांवला बादल उसके ऊपर सूर्य उगा हो, सांवला मेघ हो और उसके ऊपर सूर्य उगे, अचल रूप से सूर्य उगा हो और दोनों तरफ दो चंद्रमा हो, और भी चंचल चंद्रमा नाचते हुए चामर जो डुलाए जा रहे हैं दो चंद्रमा की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। अर्क उडुप और चाप और वनमाला जो लगाए हैं भगवान सांवले शरीर पर, तो लगता है कि उस घने बादल में दो इंद्र धनुष उगे हुए हैं जिसमें डोरी नहीं है, केवल ऐसे दिखाई दे रहे हैं चाप, दो इंद्र धनुष उगे हुए हैं इस घने सांवले बादल पर, और पीताम्बर जो है वो स्थिर विद्युत जैसा है, पीताम्बर है वो अस्थिर विद्युत जैसा। तो मान लीजिए किसी समय किसी सांवले मेघ के ऊपर सूर्य उगा हो, और सूर्य भी उगा हो और उसी समय उतने ही प्रकाश से युक्त दो चंद्रमा भी हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं होगा, कभी हो नहीं सकता, इसलिए इसको अभूत उपमा अलंकार कहते। एक सांवले बादल के ऊपर सूर्य उगा है, सूर्य के बगल में घन के दोनों तरफ दो चंद्रमा हैं, और तारे भी उगे हुए हैं, जो प्रसून की वर्षा हो रही है वो छिप छिप तारे उगे हुए हैं, तारों में भी काफी प्रकाश है, चंद्रमा के सामने या सूर्य के सामने तारे कभी दिखाई नहीं देते हैं, तारे तो इस समय भी हैं दिन में भी रहते हैं लेकिन सूर्य के प्रकाश में दिखाई नहीं पड़ते, पर वहां दिखाई पड़ रहे हैं, सूर्य भी उगा है, दो दो चांद उगे हुए हैं और तारे सब हैं, और इसके साथ ही साथ दो इंद्रधनुष दो इंद्रधनुष है और बिजली भी चमकी हुई, ऐसा कि अस्थिर है बिल्कुल, ऐसी कभी बिजली चमकी है कि जो अस्थिर रहे हमेशा सांवले मेघ में। तो अगर ऐसी ऐसा कोई बादल हो जिसके ऊपर सूर्य हो, दोनों तरफ चंद्रमा हो, नक्षत्र सब उगे हुए हों और इंद्रधनुष दो दो हो और इसके साथ बिजली भी चमकी हो लगातार, तो ऐसा होने पर वह मेघ जैसा सुंदर लगेगा वैसा सुंदर श्री कृष्ण लग रहे थे। कमाल शुद्ध गोस्वामी थे, इस तरह से ये समाधि लग जाते, भगवान के सौंदर्य पर चित्त आविष्ट हो जाते हैं सोच करके, कि ऐसा कभी हुआ नहीं है न होगा, लेकिन कदाचित ऐसा हो और उस समय वह घन जैसा शोभा देगा, सुंदर लगेगा, वैसे घनश्याम सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है। यही है सुध गोस्वामी या सुखदेव गोस्वामी की विशेषता है कि भगवान की लीलाओं को बहुत गहराई से बहुत स्पष्ट वर्णन करते हैं। बहुत देर तक भगवान चले राजपथ पर, इस तरह से चलते चलते सबसे पहले भगवान अब भवन में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि आए हैं तो अपना भगवान का कुछ घर है, वहाँ रहेंगे, विश्राम करेंगे। सब लोगों को आनंद में भगवान सराबोर कर दिए। सबसे पहले किस भवन में प्रवेश कर रहे हैं? प्रविष्टस्तु गृहं पित्रः परिस्वक्तः स्वमातृभिः बबन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। सबसे पहले भगवान पित्रोह गृहम प्रवेश करते हैं। पित्रोह का अर्थ है अपने माता पिता के घर में प्रवेश करते हैं। सारा संसार जिस प्रभु को पूजता है, इतना सत्कार कर रहा है, वो सबसे पहले भगवान अपने माता पिता के घर में प्रवेश करते हैं। बहुत दिन प्रदेश से आए हैं और बहुत धाम लेकर के भी आए हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर इनको विदा किए हैं। बहुत धन है इनके पास, बहुत सफलता है। और आप लोगों ने सुना कल कि बहुत लोग भेंट दिए थे, विविध देश में क्षेत्र में घूमते हुए भगवान आए थे। सबसे पहले अपने माता पिता के घर में प्रवेश किए, पित्रोह गृहम प्रवेश कर। और प्रवेश करने पर माताओं ने उन्हें आलिंगन में लिया, परिस्वक्त स्वमातृ भी, अपने माताओं द्वारा आलिंगन में लिए गए। यहाँ मातृ भी बहुवचन है। श्री कृष्ण की माँ तो एक थी देवकी, लेकिन मातृ स्वमातृ भी क्यों कह रहे हैं? वो भी स्वमातृ भी, अपनी माताओं द्वारा। ऐसा है कि देवकी भी सात बहन थी और सातों का विवाह है वसुदेव जी से हुआ था, और इसके अलावा भी अन्य स्त्रियां थीं, सब मिलकर के 18 पत्नियां थीं वसुदेव जी की। इन सबको प्रणाम किया भगवान ने, और सबसे पहले तो देखते ही श्री कृष्ण को आलिंगन में ले ली। श्री कृष्ण उनके लिए बिल्कुल पुत्र हैं, इनके साथ भगवान का संबंध बिल्कुल दूसरा है, स्नेह का वात्सल्य का संबंध है, परिस्वक्त स्वमात्र। और यह भी ध्यान देना चाहिए कि जितनी माताएं हैं उतने रूप से भगवान अपनी माताओं के पास गए, और सबको सबसे पहले तो उन लोगों ने कृष्ण को देखते ही भुजाओं में भर लिया, रोने लगी, प्रेम के आंसू बहाने लगी। आगे वर्णन आ रहा है, भगवान को प्रणाम करने का भी समय नहीं मिलता है, देखते ही माताएं भुजाओं में भर ली। लेकिन बाद में बबंदे सिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा, बाद में भगवान प्रणाम करते हैं। आलिंगन कर लेने के बाद भगवान ने अपना धर्म समझा कि माताओं को प्रणाम करना चाहिए। तो इस तरह से वो खड़े खड़े पहले आलिंगन में ले ली, आलिंगन से थोड़े देर छूट करके भगवान उनके चरणों में प्रणाम किया। सिरसा, सिरसा का अर्थ यह है कि साष्टांग लेट करके और अपने सिर को चरण से सपा करके प्रणाम किया। माँ को इस तरह से प्रणाम किया। पिताजी को तो प्रणाम कर चुके थे, तो रास्ते में मिले थे, वसुदेव जी चले गए थे, लेकिन माताओं को भगवान इस तरह प्रणाम कर रहे हैं। इस तरह माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, जैसे बेटी को करते हैं सिर से। या कम से कम सिरसा का यह अर्थ है कि सिर को उनके चरण में सटा कर प्रणाम करना, झुक करके, जैसे नहीं केवल हाथ बढ़ाकर ऐसे सिर लिया हो गया। खैर आजकल के लोग यह भी करें तो बहुत ही सिरसा प्रणाम की चरण से सटा कर सभी माताओं को, केवल देवकी जी को नहीं, रोहिणी आदि थी, सबको उन्होंने प्रणाम किया, सबको अपनी माँ मानते थे। कोई भेद नहीं करते थे भगवान, सबके आलिंगन में आए। और भगवान आलिंगन में तो बिल्कुल माँ के छाती से सट गए और बिल्कुल उनके बच्चे के रूप में। उस समय भगवान की उम्र कम से कम 90 वर्ष की थी प्रकट लीला में। कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया था, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था उस समय भगवान लगभग 100 वर्ष के थे जिसे शास्त्र कहता है। लेकिन माताओं के लिए वो पुत्र ही है। ताह पुत्रमंकम आरोप्य स्नेह स्मित पयोधरा हर्ष विहवलितात्मा न सुस्तुर नेत्र जई जलहि। इतना स्नेह से अभिभूत हो गए थे, इतना स्नेह भगवान के प्रति उमड़ा कि जब पलंग पर वे बैठी, पलंग पर बैठ करके श्री कृष्ण को गोद में ले लिया। इस तरह से पहले तो खड़े खड़े आलिंगन किया था भगवान का और अब पलंग पर बैठ कर पुत्र को गोद में ले ली माता। स्नेह स्मित पयोधरा और स्नेह से उनका स्तन चुचवाने लगा, दूध चूने लगा भगवान को पिलाने के लिए। यह अप्राकृत जगत की लीला है। वहां पर माँ जो है सदा माँ रहती है और कृष्ण हमेशा पुत्र रहेंगे। कभी वहां ऐसा नहीं है कि कृष्ण अब नहीं रहे, पुत्र नहीं रहे। नित्य संबंध है भगवान का। यह तो एक झलक दी जा रही है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किस तरह भगवान के साथ स्नेह का संबंध होता है। 100 वर्ष के लड़के के लिए अभी माँ के स्तनों में दूध पी रहे हैं। कहीं यहाँ कोई माँ ऐसी कल्पना कर सकती है? वो थोड़े समय तक दूध रहता है, खासकर के बच्चा जब तक भात रोटी नहीं खाता है तब तक दूध रहता है। ये भगवान की व्यवस्था है। और जब वो खाने लगता है, कोई दूसरा दूध पीने लगे या खाने लगे तो दूध सूख जाते हैं। और उसको किसी भी मैकेनिकल प्रोसेस से दूध बनाया नहीं जा सकता है, ये भगवान की व्यवस्था है। वास्तव में बच्चा जब गर्भ में होता है तो माँ के स्तनों में दूध धीरे 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 बढ़ने लगता है और जन्म लेता है तो उसका आहार माँ के देह में ही भगवान स्तन ग्रंथि में भरते हैं, सुख जाता है। ये प्राकृतिक जगत का संबंध है। ये संबंध भी नष्ट हो जाता है, भाव और देह सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन अप्राकृतिक जगत में भगवान के साथ जो संबंध है वो नित्य चलता रहता है। अनादि काल से वो है और अनंत काल तक चलता रहेगा, उसमें कोई काल बाधा नहीं दे सकता। स्नेह स्मित पयोधरा, पयोधर का अर्थ है स्तन। पय धरती इति पयोधरा, पयकार से दूध, जो दूध को धारण करे उसको पयोधर कहते हैं। पयकार से कभी कभी जल भी होता है, पयोधर का अर्थ कभी मेघ भी होता है, जो जल को धारण करे वो पयोधर। यहाँ पर पयोधर का अर्थ है स्तन। स्मित, स्मित का अर्थ है चुचुआना, दूध बाहर आना, दूध आने लगा। 100 वर्ष पहले कृष्ण जन्म लिए हैं और 100 वर्ष के बाद भी दूध चूने लगा, यह विचारणीय बात है। यह है अप्राकृत जगत में भगवान के साथ जीव का नित्य संबंध। स्नेह स्मित पयोधरा और हर्ष विह्वलितात्मान, हर्ष से विह्वल हो रहे थे, विह्वल स्तंभित हो रहे थे और ये सोच रहे थे कृष्ण को ये खिलाना है, ये पिलाना है, ये खिलाना है, क्या खिलाऊं क्या बनाऊं। बच्चा बहुत दिन से आया है परदेश से, पता नहीं उसको कैसा खाने को मिलता होगा, नहीं मिलता होगा। माँ यही सोचा करती है, हमेशा माँ यही सोचती है कि बाहर गया है, उसको खाने को कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा ये नहीं होगा। हर्ष से विह्वलित थी और शिशु नेत्र जल, गोद में कृष्ण को बैठा करके